नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। बचपन में स्कूल में हम एक गीत गाया करते थे, प्रार्थना किया करते थे प्रतिदिन कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तब तो प्रतिदिन हम ये प्रार्थना किया करते थे लेकिन इसका भाव नहीं समझ पाते थे। अब इसका भाव समझ में आ रहा है और साथ ही हम उस सत्य की ओर बढ़ रहे हैं तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। वो प्रकाश अब अंतर को भी प्रकाशित कर रहा है। कल दो विशेष चर्चा हम कर रहे थे, जिस दो बिंदु पे हम रुके हुए थे वो ये कि जिस परमात्मा की जन्म जन्म से तलाश थी उससे मिलन संभव है। कैसे वो मिलन संभव होगा उस पर आज की चर्चा केंद्रित रहेगी। और साथ ही दूसरी बात भी कि हम उनके लिए कहते रहे हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो वो सर्व संबंध की अनुभूति भी कैसे उनसे की जा सकती है, आज की चर्चा इस पे भी केंद्रित रहेगी। तो आइए भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं और आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
थैंक यू
भ्राता जी। पहली बात तो वही कि मिलन, आपने कल भी कहा था लाखों लोग मना रहे हैं, उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और साथ ही अपने आप को बहुत ही तृप्त कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। अब हमारे दर्शक यदि वही मिलन मनाना चाहें क्या करें?
पहले तो मैं उस प्रार्थना के लिए कुछ कहना चाहूंगा जो बचपन में हम सब करते थे।
जी जी।
कितने अच्छे शब्द हैं, किसने लिखी मुझे याद नहीं अभी, लेकिन
क्या यही प्रार्थना आप लोग भी गाया करते?
हाँ, हमारी कुछ अलग अलग थी, कहीं ये गाते थे कहीं दूसरे गाते थे।
जी जी।
तो मैं सोचता था तब भी कि कितना अच्छा माहौल हो जाता था चारों ओर। अब भी कहीं कहीं हम स्कूलों में प्रोग्राम करने जाते हैं तो बच्चे यही गाते हैं।
जी।
तो दिखाई देता है कितने अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं और एक बहुत सुखद फीलिंग, आनंदकारी फीलिंग माहौल में हो जाती है। तो वास्तव में सब देखिए, ज्ञान हमको दीजिए, गए हैं स्कूल में ज्ञान लेने लिए, मांग रहे हैं भगवान से ज्ञान, सिद्ध है कि अवश्य कभी वो ज्ञान देते हैं।
जी। और ये भी सिद्ध है कि शायद हम अज्ञानी हैं।
हाँ, दोनों बातें सिद्ध हैं।
जी।
अभी वहाँ हमारे मास्टर लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, ज्ञान हमें वो देंगे लेकिन ज्ञान मांग रहे भगवान से, तो स्पष्ट है कि वो ज्ञान नहीं है, हमें किसी और ज्ञान की जरूरत है। तो वो ज्ञान भी देते हैं क्योंकि ज्ञान सागर है, वो स्वयं ज्ञान सागर हो, उसका ज्ञान उसके लिए थोड़ा ही होगा, हम सब के लिए होगा। जो रोज गाते हैं हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो वो ज्ञान भी देते हैं और उससे मिलन की इच्छा भी हरेक मनुष्य के मन में है, तो वो मिलते भी अवश्य हैं। यदि उनसे हमारा मिलन न हुआ होता तो ये इच्छा भी कदापि हमारे मन में न उठती।
बिल्कुल।
तो मिलन का उनके एक समय होता है और जैसा हम चर्चा कर आए, बहुत सारी महान आत्माओं ने उनसे मिलन किया है और हमें तो ये वरदान जैसा है कि जब चाहे मिलन कर लें। रोज सवेरे तो बहुत सुखदाई मिलन होता है लेकिन दिन में भी जब चाहे अधिकार प्राप्त है उससे मिलने का, जितनी देर चाहे मिले उसकी दृष्टि लें, उनसे बात करें। यही मिलन हम भी चाहते हैं कि संसार के हमारे सभी भाई बहने जो परमात्मा मिलन के लिए, सत्य ज्ञान के लिए मैं कहूँगा तरस रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं, बहुत लोग भटक भी रहे हैं, कोई वाद विवाद भी कर रहे हैं, तो हमारी ये इच्छा है कि ये मिलन सबको प्राप्त हो क्योंकि इसमें परम सुख है, परम आनंद है। केवल गाने की बात नहीं है, प्रभु तुम आनंद दाता हो, लेकिन वो आनंद दे रहा है, उस आनंद रस को चखने की जरूरत है जो वास्तव में बहुत डिवाइन है, बहुत सुंदर है। मैंने बहुत सारी चीजें इसके बारे में देखी पढ़ी, किसी व्यक्ति ने आनंद को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया।
ये भी कहते हैं इसका विपरीत शब्द भी किसी ने नहीं ढूंढा है अब तक,
क्योंकि ये ऐसी फीलिंग है जैसे हम कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन खाएं और कोई हमसे पूछे कैसा था, हम कहेंगे बहुत टेस्टी, बड़ा मजा है, पर कैसा था इसको डिफाइन करना कठिन है। परम आनंद भी स्पिरिचुअलिज्म की सबसे ऊंची स्थिति है, जो खुशी से भी बड़ी स्थिति है, जो ईश्वरीय नशे से भी ऊपर की स्थिति है, जो कर्मेंद्रियों के रसों से बहुत परे की स्थिति है, उसको अनुभव में लाना अब सरल है क्योंकि आनंददाता स्वयं आनंद की अनुभूति करा रहा है, नाता जोड़ रहा है। बात यह है कि कैसे करें। भगवान जब तक खुद इस धरा पर ना आए तब तक किसी को ये भी पता नहीं चल सकता कि वो है क्या और वो रहता कहाँ है। उसकी खोज ही चालू रहती है। अब उसने आकर ये स्पष्ट कर दिया, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ से आता हूँ, कब आता हूँ और तुम्हारा और मेरा क्या नाता है, कैसे दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये सब बातें हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 डेज कोर्स के रूप में ही दे दी जाती हैं, 1 घंटा प्रतिदिन केवल
जी।
और बहुत लोग इसको कर ही रहे हैं, मैं समझता हूँ करोड़ों लोगों ने ये कोर्स कर लिया होगा। और बाकी रही इन धारणाओं पर चलने की बात, क्योंकि हमारे यहाँ केवल ये नहीं कि मेडिटेशन सिखा दिया जाए, हम सिखाएं और आप सीख लें, हम ज्ञान दें और आप ले लें, लेकिन उसे प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना होता है। जो अपनाने का मार्ग स्वीकार करते हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। चाहे वो गृहस्थ में रहें, नौकरी धंधों में रहें, अपने कामकाज बिजनेस आदि करें, लेकिन अगर यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें क्रोध से मुक्त होना है तो हर व्यक्ति ये पुरुषार्थ करता है, इसलिए सभी को इसे जोड़ना चाहिए। मैं इस बारे में ये और कह दूं, देखो गुरुओं से जुड़कर देख लिया, गुरुओं की भक्ति करके देख लिया, उनसे जितना भी ज्ञान थोड़ा बहुत भी मिलता है वो भी लेकर देख लिया, लेकिन अब भगवान आह्वान कर रहा है, आओ मेरे बच्चे मुझसे ज्ञान लेकर देखो, क्योंकि ज्ञान सागर वही है केवल, और वही संपूर्ण सत्य भी है, वही सदा के लिए परफेक्ट भी है, उसका ज्ञान भी परफेक्ट है, तो अब उसका परफेक्ट ज्ञान लेकर देखना ही चाहिए।
एक चीज आपने कही जो हमारे दर्शकों के लिए, जो मैंने प्रश्न उठाया था कि वो कैसे इस मिलन का अनुभव या सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो एक तो आपने 7 डेज कोर्स की बात कही जो विद्यालय के ब्रांचेज में दिए जा सकते हैं, तो क्या बस ये कोर्स करके ही कोई यहाँ आके मिलन मना सकता है या आगे भी उन्हें कुछ करना होगा?
जैसे मैंने कहा कि ये केवल ज्ञान लेने और देने तक सीमित नहीं रहता
जी,
हमें इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लेना होता है। पहली धारणा होती है प्योरिटी, पवित्रता, मन वचन कर्म की प्योरिटी, क्योंकि परमात्म ज्ञान है ही आत्मा को संपूर्ण पावन करने के लिए। कई लोग इस पे भी बड़ी बहस करते हैं कि आत्मा तो पावन है ही, लेकिन पावनता की डिग्री धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे हमने सफेद वस्त्र पहने हैं और मान लो हमारे सफेद वस्त्र थोड़े मैले हो जाएं और बहुत मैले हो जाएं, तो भी देखने वाला कहेगा तो यही कि सफेद कपड़े पहने हैं। मैल को हम साफ कर देते हैं तो वो सफेदी और निखर के सामने आ जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा मूल रूप में संपूर्ण पवित्र थी, चलते चलते ये मैल उस पर चढ़ा, कर्मों का लेपक्षेप उस पर आया, मैली हुई आत्मा कई दाग धब्बे पाप कर्मों के और विकर्मों के उस पर चढ़े, अब उसको धोने का समय है ताकि फिर से आत्मा संपूर्ण पावन हो जाए। तो ज्ञान लेने के बाद संपूर्ण पवित्र बनने के मार्ग पर आगे बढ़ना होता है, तो ऐसा 1 वर्ष तक अवश्य करना होता है, क्योंकि 1 वर्ष एक ऐसी अवधि है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन 1 वर्ष करेगा वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकारों को अवश्य जीत लेता है, वो अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, वो आत्मसंयम की स्थिति में आ जाता है, तब वो यहाँ आकर प्रभु मिलन करते हैं।
मतलब 1 वर्ष तक ये ब्रह्मचर्य की उन्हें धारणा करनी होगी, तो क्या प्रतिदिन विद्यालय में जाने की भी आवश्यकता है या 7 दिन के कोर्स के बाद 1 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य की साधना करें फिर यहाँ आ सकते हैं?
देखिए ब्रह्मचर्य की साधना संसार में रहते हुए उतनी सरल नहीं होती, इसके लिए मनुष्य को निरंतर गाइडलाइन की जरूरत होती है, उसको योग साधना की जरूरत होती है, क्योंकि योग साधना भी ऐसी चीज है कि एक बार किसी ने सीख ली और वो योग करता रहेगा और वो सफल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मंत्र नहीं है कि एक बार गुरु ने मंत्र दे दिया और वो जाप करते रहे, चलो मन भटकता भी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये राजयोग तो परमात्म मिलन है, और जब तक मनुष्य का चित्त पूरी तरह शांत न हो तब तक उससे साधनाएं नहीं होती, और जब तक वो साधनाओं के फील्ड में सफल नहीं होता ब्रह्मचर्य उसका नेचुरल नहीं होता, वो आनंदकारी नहीं होता, वो अपनी वासनाओं को दबा तो सकता है लेकिन उन्हें नष्ट नहीं कर पाता। तो निरंतर हमारी सेवा केंद्रों पर क्लासेज होती हैं, रोज सवेरे कहीं 6 बजे से होती हैं, कहीं 6:30 से, कहीं 7 से, दिन में होती है, शाम को भी होती है, तो व्यक्ति वहाँ पर जाते हैं और राजयोग की साधना वहाँ करते हैं, कि वहाँ ऐसे कक्ष बने हुए हैं, वहाँ मेडिटेशन रूम है, जहाँ के वाइब्रेशन बहुत सुंदर हैं, वहाँ बैठकर एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, वहाँ शांति का माहौल रहता है, वहाँ ग्रस्त नहीं है कुछ भी, कारोबार वहाँ नहीं चलती है, तो वहाँ जाकर बहुत अच्छा ज्ञान लेते हैं। परमात्म महावाक्य होते हैं, रोज वहाँ सुनाए जाते हैं और राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो उस ज्ञान और अभ्यास के बल से राजयोग सरल होता जाता है, और राजयोग सरल होने से प्योरिटी अर्थात ब्रह्मचर्य सरल और नेचुरल रूप लेता जाता है। बहुत से लोग हमसे शुरू में पूछा करते थे कि ब्रह्मचर्य बहुत कठिन काम है, तुम यहाँ रहते हुए कर ही नहीं पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा, सन्यासी भी नहीं कर पाते, हमने सब देख लिया है। कई सन्यासी भी हमसे बड़ी उत्सुकता पूर्वक प्रश्न करते थे कि आप लोग ये कैसे संभव करते हो। तो इसका उत्तर यही है कि राजयोग की साधना से ये संभव होता है कि आत्मा अपनी मूल स्थिति में चलने लगती है, और मूल स्थिति की ओर बढ़ने से प्योरिटी उसकी नेचुरल एक स्थिति है, तो प्योरिटी नेचुरल होने लगती है। ये कार्य हमारे सेवा केंद्रों पर नियमित रूप से होता है।
पिता जी, कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो हमें फोन करते हैं या ईमेल करते हैं, वो ये बताते हैं कि अब वो पीस ऑफ माइंड चैनल के थ्रू ही जुड़े हुए हैं विद्यालय से, क्योंकि उनके जो स्थान है वहाँ पे विद्यालय नहीं है, दूर है, कहीं 40-50-100 किलोमीटर दूरी पे है। अब वो लोग भी यदि निरंतर देख रहे हैं पीस ऑफ माइंड चैनल, वो भी यदि ये जो धारणा आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो क्या उन्हें भी अनुमति मिल सकती है कि वो यहाँ हेडक्वार्टर्स में आए और परमात्मा मिलन करें?
वो कहीं ना कहीं हमारे जो सेवा केंद्र हैं उनसे कांटेक्ट जरूर करें। पास जो भी सेंटर है भले ही वहाँ वो हफ्ते में एक बार जाया करें, बहुत दूर है तो मास में एक बार जाया करें। इन धारणाओं को अपनाएं ताकि वो जो हमारी टीचर बहने हैं जो नियुक्त हैं, व्यक्ति हमारे पास आता है और इसने ज्ञान योग धारण किया है, क्योंकि अन्यथा कोई भी हमारे प्रोग्राम में आ जाएगा और कहेगा मैं तो पवित्र रहता हूँ, अगर वो पवित्र है तो उसे परमात्मा मिलन के सुंदर अनुभव होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। ये लॉस या प्रॉफिट बेनिफिट उसको है, ये हमें नहीं। तो फिर भी ये जरूरी है पहचान के लिए कि व्यक्ति अपने किसी भी नजदीकी सेवा केंद्र से कनेक्शन जोड़े, और फिर उनके माध्यम से, क्योंकि वहाँ से ग्रुप्स आते हैं, वो यहाँ पर आए। लेकिन पीस ऑफ माइंड चैनल देखकर भी बहुत लोग अच्छा सीख रहे हैं। हमारे पास भी ये समाचार आते रहते हैं कि हम जा तो नहीं पाते हैं, या घर में कोई बंधन है, कुछ भी कारण है कि वो रोज सेवा केंद्र पे जा भी नहीं पाते, लेकिन चैनल देखकर ही वो काफी अच्छा योग सीख चुके हैं, स्वमान सीख चुके हैं, धारणाएं सीख चुके हैं। ये बहुत सुंदर बात है और ये हमारे इस चैनल की बहुत बड़ी सफलता भी है। हमें बहुत खुशी होती है कि घर बैठे लोग ईश्वरीय सुख ले रहे हैं, सचमुच ले रहे हैं, और हमारी कामना भी यही है कि सब लेते रहें इसी तरह।
तो ब्रह्मचर्य की बात कही, बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है। इसके अलावा भी क्या कुछ और भी धारणाएं ऐसी करनी होती हैं जो परमात्म मिलन के लिए आने में सहयोगी भी हों और साथ ही मददगार हों सुंदर अनुभूति के लिए?
जैसा मैंने पहले कहा कि पहले तो ये ज्ञान निरंतर लेना होता है, क्योंकि ज्ञान एक बहुत विशाल भंडार है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनने के लिए मनुष्य को कितने लंबा काल, 7 साल 8 साल 10 साल लोग लगे रहते हैं, इतने एडवांस होते भी कितने इसके पार्ट हो गए। ठीक है, स्पेशलाइजेशन अच्छी चीज है, तो ज्ञान लेने के लिए एक लंबा समय मनुष्य को उसकी अभ्यास की जरूरत होती है। एक ज्ञान है मोटा, मान लो यही ज्ञान दे दिया गया तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्माएं हो, लेकिन आत्मा का ज्ञान यही समाप्त नहीं हो जाता, ये तो शुरुआत होती है। बहुत अच्छे ज्ञान के बाद, बहुत अच्छे राजयोग के अभ्यास के बाद आत्मा की सूक्ष्म स्थितियों का, उसकी सूक्ष्म शक्तियों का मनुष्य को ज्ञान होता है, उसका डीप रियलाइजेशन होता है। इसलिए पहली धारणा हो जाती है रोज लंबा काल। हम तो ये जानते हैं, हमें भी 50 साल हो गए हैं, लंबा काल डेली स्टडी करने से ज्ञान सूक्ष्म रूप से जीवन में आता है, क्योंकि हमें ज्ञान लेने की ही बात नहीं, ज्ञान को जीवन में धारण करने की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा जीवन ही एनलाइटन्ड हो जाए, बिल्कुल प्रकाशित हो जाए हम ज्ञान के द्वारा। दूसरी धारणा होती है शुद्ध अन्न।
जी,
अन्न का मनुष्य के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, अन्न क्योंकि अंदर ही जा रहा है, उसका तन पर भी असर है, तो मन पर भी असर है, बुद्धि पर भी असर है, संस्कारों पर भी असर है। लोग नॉन वेज खाते रहते हैं, कहते हैं हम तो बहुत अच्छे, हम तो गुस्सा भी नहीं करते, ये ठीक है, लेकिन उससे कई चीजें अंदर में डैमेज होती रहती हैं, कई जो अच्छाई है वो नष्ट होती रहती हैं, और मनुष्य नेचुरल रूप से तो शाकाहारी प्राणी है, सात्विक भोजन लेना, और उसमें भी भोजन उन आत्माओं के हाथ से बना हुआ हो जो पवित्र हैं, उनकी मनोस्थिति का सीधा इफेक्ट अन्न पर आ जाता है। ये बड़ी नेचुरल सी चीज है, आजकल तो साइंटिस्ट ने भी ये बात स्वीकार कर ली है और रिसर्च कर दी है कि मनुष्य के मन के वाइब्रेशंस पानी दूध भोजन पर कैसे गहरा प्रभाव डालते हैं। उसके वाइब्रेशंस को ये अन्न और जल ग्रहण कर लेता है और ये उसको ग्रहण हो जाता है जो उसे ले रहा है। तो सात्विक अन्न परम आवश्यक है। वैसे भी हम भगवान के बच्चे हैं और हमारा लक्ष्य होता है मनुष्य देवत्व की ओर चलना, क्योंकि हम देवों की भी संतान हैं, हमारे अंदर संपूर्ण देवत्व भी है। उस देवत्व को उजागर करना, फिर से इमर्ज करना, अपने जीवन में लाना, उसके लिए बहुत सात्विक अन्न की जरूरत होती है। किसी ने नहीं सुना कि देवता कभी मांसाहारी थे या वो ऐसा वैसा भोजन करते थे, भोग भी उन्हें लगाया जाता खीर पूरी का, बहुत अच्छी चीजों का। ये जो आजकल देव देवताओं को मांसाहारी दिखा दिया गया, ये तो देव देवता हैं ही नहीं, ये तो भटकती आत्माएं होती हैं जो मांसाहार का सेवन करती। तो वास्तव में सात्विक भोजन। और ऐसे फिर चौथी धारणा है कि जो सद्गुण हमें रोज सिखाए जा रहे हो वहाँ क्लासेज में, उनको अपने जीवन में अपनाना। तो ये चार मुख्य धारणाएं होती हैं, ब्रह्मचर्य, सात्विक अन्न, प्रतिदिन ज्ञान श्रवण करना, उसकी चर्चाएं करना, और दिव्य गुणों की, सद्गुणों की जीवन में धारणा करना। इन चारों में मनुष्य जितना आगे बढ़ता है वो परमात्म मिलन के उतना ही योग्य बनता है, क्योंकि मिलन के अनुभव सबको अपनी स्थिति के अनुसार होंगे। जितना स्पिरिचुअल लेवल हमारा ऊंचा उठता जाएगा, उतना ही परमात्म मिलन का सुखद अनुभव हमें होता जाएगा।
मतलब ये सारी चीजें एक नींव का काम करेंगी, और जब हम इस प्रभु मिलन में आएंगे तो हमें गहरे से गहरे अनुभव होंगे। प्रता जी, मान लीजिए मैं अकेले ही अपने परिवार से चल रहा हूँ और ये चीजें परिवार में नहीं है, परिवार के अन्य सदस्य मुझे इस चीज में उतना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी मेरी प्रबल इच्छा है क्योंकि अब मैंने जान लिया कि परमात्मा आए हैं सृष्टि पे, मैं भी मिलन मनाऊं, तो वहाँ पे कठिनाई की स्थिति बहुतों को हो सकती है, वो लोग क्या करें?
लाखों लोग ऐसे हैं जिनका परिवार में सहयोग नहीं, लेकिन वो चलते हैं। इसमें जरूरत पड़ती है अपनी दृढ़ता की और अपने साथियों को कन्विंस करने की। लेकिन मान लो बात ब्रह्मचर्य की है जो सबसे प्रमुख है
जी।
एक कन्या आती है और वो अपने माँ बाप को कहती है मैं शादी नहीं करूंगी, तो माँ बाप भी उग्र हो जाते, क्यों नहीं करेगी भाई, कैसे तुम्हारा जीवन चलेगा, किसने तुम्हें एक गलत पाथ पढ़ा दिया, सब तो शादियां कर रहे हैं। दूसरी कन्या है, वो अपने माँ बाप को कहती है मुझे सपने में परमात्म मिलन हुआ है, मैं योग साधन बैठी तो भगवान ने मेरे सम्मुख आकर कहा बच्चे अब पवित्र बनो, इस देश को, इस संसार को तुम्हारी पवित्रता की बहुत आवश्यकता है, तुम तो इस घर में देवी हो। माँ बाप थोड़े खुश होते हैं। तीसरी कन्या का केस है, वो भी अपने माँ बाप के पास जाती है और वो यही कहती है मैंने सात्विक जीवन अपना लिया है, संसार की कन्याओं को मैंने देख लिया है, कोई भी पवित्रता के मार्ग पे नहीं है, सबने अपने अफेयर्स कर लिए हैं, कहीं ना कहीं कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस चक्कर में फंस गए हैं, मुझे तो अब भगवान के काम आना है, भगवान का आदेश मुझे मिला है, और आपको ये गर्व होना चाहिए आपके घर में ऐसी एक कन्या है जो देवी है, आप मुझे प्लीज सहयोग करें। यहाँ माँ बाप की मानसिक स्थिति और हो जाती है। तो कैसे व्यक्ति कन्विंस करता है अपने साथियों को, अपने गार्जियंस को, अपने बड़ों को, इस पे निर्भर करता है। एक व्यक्ति कह देता है मुझे तो ये करना है, तुम करो या ना करो, वहाँ मान लो दूसरे लोग छोटे भी हों से सहमत भी हो जाएंगे, अच्छा कर लो, लेकिन एक वास्तविक प्रेम सम्मान इसमें नहीं रहता है। तो हमारे बोल इसमें बहुत सुंदर हो, हमारा जो दूसरे को कन्विंस करने का तरीका हो वो बहुत ही अलौकिक हो, तो ऐसी कोई बात नहीं कि सत्य के मार्ग पे चलने वालों को साथ न मिलता हो। यद्यपि कहा यह जाता है कि सत्य अकेला होता है, लेकिन सत्य में बहुत शक्ति तो है, सत्य के साथ स्वयं भगवान तो है। मैं तो अपने कुमार और कुमारियों को रोज कहता हूँ, मेरे पास आते रहते हैं, कि अरे भाई देखो कलयुग में कुमार और कुमारियां कहाँ जा रहे हैं, माँ बाप भी उनसे दुखी हैं और वो भी अपने जीवन में बहुत दुखी हैं। मेरे पास ऐसे कैसे जाते हैं कि किसी लड़के से अफेयर हो गया था, मैं बीटेक फाइनल में हूँ, अब फाइनल एग्जाम है, अब उसने छोड़ दिया मुझे, उसका किसी और से प्यार है, तो अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरी कंसंट्रेशन 1% भी नहीं रह गई। अब मैं तो जो टॉप क्लास स्टूडेंट रही हूँ, मैं तो फेल होने के कगार पे आ गई हूँ। तो मैं समझाता हूँ माँ बाप को, मैं कहता हूँ अरे भाई जो तुम्हारे बच्चे सात्विकता के मार्ग पे चलते हैं उन्हें सहयोग करो, ये गंदगी का मार्ग तुम्हें भी बदनामी दिलाएगा और उनके जीवन को कैसा कर रहा है। टॉप मोस्ट स्टूडेंट बिल्कुल नीचे आ गए हैं इस कलयुगी गंदगी के कारण, नेट के कारण। इसलिए हम कैसे अपने माँ बाप और पेरेंट्स को समझाएं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मैं कहूंगा कि सबको साथी बनाना ये भी एक कला है, फ्रेंड्स बना लेना दूसरों को ये एक बहुत बड़ी कला है। इसलिए किसी के परिवारों में उन्हें सहयोग न भी हो तो भी वो कुछ अच्छी साधनाएं करें और साधनाओं के द्वारा अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएं। इन वाइब्रेशंस के द्वारा सभी लोग उनके सहयोगी अवश्य बन जाएंगे।
किस प्रकार का वाइब्रेशन हो सकता है?
खास कन्या और कुमारों को या माताओं को कि आप योग अभ्यास करके, राजयोग मेडिटेशन करके, जो भी आपके इर्द गिर्द ये दो चार आत्माएं हैं जो आपका विरोध करती हैं, उन्हें आत्मा देखो और गुड वाइब्रेशंस दो, 3 मिनट 5 मिनट, और फिर एक संकल्प करो दे आर माई गुड फ्रेंड्स, ये सभी मेरे सहयोगी हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो उनकी जो मेंटेलिटी है वो बदल जाएगी, जो हम उन्हें कह रहे वो भी सोचेंगे अरे फलाने की लड़की देखा किसी के साथ भाग गई, फलाने का लड़का बुरे संग में आ गया है, अरे वो कितना होशियार था कैसे दुर्गति के मार्ग पे चला गया, मेरी लड़की तो अच्छे मार्ग पे चल रही है, मैं इसको सहयोग करूंगा। हमारे वाइब्रेशन उनकी फीलिंग्स को बदल
करते हैं। बिल्कुल, चलिए बेटा जी, बहुत अच्छा लगा आपने कैसे प्रभु मिलन तक पहुंचे इसका बहुत सुंदर रास्ता बताया है, और साथ ही यदि परिवार में सहयोग भी ना मिल रहा हो कैसे सबको सहयोगी बनाए इस पे भी सुंदर प्रकाश डाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आज बहुत सुंदर एक रास्ता हमें प्राप्त हो गया है कि हम कैसे परमात्मा मिलन मना सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी प्राप्ति है मैं कहूंगा, क्योंकि स्वप्न में भी नहीं था कि परमात्मा से कभी मिलन हो सकता है, क्या हम उन्हें देख सकते हैं, क्या उनसे हम वरदान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सुंदर रूप से राजयोग के अभ्यास से और साथ ही चार सुंदर स्तंभ भ्राता जी ने बताए हैं, हम सत्संग करें अर्थात ज्ञान का श्रवण करें, उस पे चिंतन करें, साथ ही ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण धारणा है, अन्न की शुद्धि वो भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि सुंदर गुणों की धारणा कर ली जाए तो वास्तव में हम परिपक्व हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं परमात्मा मिलन के लिए, और राजयोग केंद्र में ये सारी चीजें बहुत सहज और सरल हो सकती हैं। यदि भगवान से मिलना है तो इतना तो हम अवश्य कर सकते हैं, गला काटने को तैयार रहा करते थे हम, क्या एक वर्ष ये साधना नहीं कर सकते? मुझे लगता है हम सब जरूर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, विचार कीजिएगा इस पे। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू कल भर में मुश्किलें आसान, अपनी